તારીખ 1/5/1994 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 254 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું મુંબઈમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 85.
सिद्ध रूप से ऐसा कहने में आता है कि जानना आत्मा का स्वभाव है, किंतु अध्यात्म के प्रकरण में ऐसा कहने तो ज्ञान ज्ञान का अनुभव करें यही इसका स्वभाव है और ज्ञान और किसी अन्य द्रव्य अनुभव अन्य भाव का अनुभव कर सके नहीं, यही वस्तु स्थिति है, ये वस्तु स्थिति है, कर ही नहीं सकता। और वस्तु स्थिति का उल्लंघन किया नहीं जाना, वस्तु के स्वरूप का उल्लंघन नहीं किया जाना, इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि यह जो ज्ञान है यही सच्चा आत्मा है। सत्य आत्मा मैंने सच्चा आत्मा है, सत्य आत्मा माने सत्ता स्वरूप आत्मा है, मौजूदगी रूप आत्मा है। सत्य शब्द वहां से आया है, फिर रूढ़ी वस्तु को सच्चा जूठा में हम ले गए हैं। जो सत्ता जिसका स्वभाव है, अस्तित्व स्वभाव है, उसको गुणवाचक बोलने से सत्य कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? जो मौजूदगी है इसका गुण को ही सत्य कहते हैं, अस्तित्व को। और वही श्रद्धा का ग्रहण करने का एक मुख्य गुण है सत्य मैंने श्रद्धा। सम्यक श्रद्धा क्या कार्य करती है ऐसा तो प्रश्न उठाया जाए। सच्ची श्रद्धा सम्यक श्रद्धा का कार्य क्या है? कि अपने अस्तित्व को ग्रहण करके बैठ जाना है, ये इसका कार्य है। क्योंकि वो कुछ जानती नहीं, जानने का कार्य तो उसका है ही नहीं, तो श्रद्धा करने का कार्य है, तो कुछ जानती तो है नहीं। लेकिन सद्धता है किसको है अपने अस्तित्व और अपने अस्तित्व में पूरे अनंत गुण भरे हुए हैं, इसलिए पूरा द्रव्य का समावेश उसमें हो जाता है, इसलिए उसको द्रव्य दृष्टि कहने में आई है। तो उतना ही सत्य आत्मा है, सत्ता स्वरूप आत्मा है, आश्रय करने लायक आत्मा है, क्योंकि आधार तो सत्ता का है जाने कि जितना यह ज्ञान है, इतना सरल कर दिया है, इतना सरल कर दिया है कि देखो तो सही, ये तो तुमको देखना है। देखने का मतलब ये कहते हैं, कहना चाहते हैं कि हमने सोचा तो है, पढ़ा तो है, सुना तो है, विचार किया है, कुछ चिंतन भी किया है, लेकिन देखा नहीं। क्या हमारे विचार से, हमारे पठन रूप स्वाध्याय से, श्रवण रूप स्वाध्याय से, चिंतन रूप स्वाध्याय से हमें एक कदम आगे बढ़ना है, एक कदम आगे जाना है, और ये कदम कौन सा है कि हमें देखना है। यहाँ से प्रयोग चालू होता है, सुनना पढ़ना, चिंतन करना, मंथन करना, मनन करना, वहां तक थियोरिटिकल ज्ञान जो है उस मर्यादा में ये सब प्रयास। अब हमें इसके आगे एक कदम बढ़ना है, तो हमें प्रयोग में आना है, तो हमें देखना है, अवलोकन करना है, और किसको के स्वयं के ज्ञानानुभव को, किसको स्वयं के ज्ञानानुभव को, ज्ञान वेदन को हमें देखना है, यानी हमारे अनुभव पर, हमारे वेदन पर, हमारे उपयोग को ले जाना है। पर्याय दो नहीं है, ये कल्पना कतई नहीं करनी चाहिए कि यहाँ दो पर्याय है, उपयोग भी पर्याय और वेदन भी पर्याय, दो नहीं, एक ही पर्याय में दोनों, एक ज्ञान विशेष है, एक ज्ञान सामान्य है। और ये वेदन है, यहाँ वही स्वभाव, यही स्वभाव है, ऐसा ही प्रकट स्वभाव है, ऐसा ही व्यक्त स्वभाव है, इसलिए श्री गुरु कहते हैं कि यही सच्चा आत्मा है, यही परमार्थ स्वरूप आत्मा है, जहाँ परम प्रयोजन रहा है आश्रय होना, किसी का आश्रय होना चाहिए। प्रत्यक्ष है ही, लानी नहीं है, है उसको देखना है। क्या देखने में ये अच्छा से अच्छा तो क्या है, उस प्रयोग में क्या है, जहां तक देखना के पहले की बात है, परोक्षता, उसमें ऐसा करूं, वैसा करूं, ये करूं, वो करूं, कम से कम पुरुषार्थ तो करूं, ये करूं करूं के पीछे मरू मरू वाली बात चालू हो जाती है। पुरानी जी कहते हैं कि करना तो मरना बराबर, और ये पर्याय का कर्तृत्व तो पुरुषार्थ के बहाने, ज्ञान के बहाने, कृपा करने के बहाने, ज्ञान करने के बहाने ये कर्तृत्व छूटना, कैसे छूटे, हम देख तो रहे ही हैं, जब देख ही रहे हैं तो अपने आप को क्यों नहीं देख रहे हैं, देखने वाले को क्यों नहीं देख रहे हैं, बस तो दूर तो नहीं है, कोई दूर चीज हो देखने में नहीं भी आ रहे, दूर तो है ही, तो भी तो है, जहां ज्ञान विशेष स्वयं अपनी दिशा को बदलता है। यह ज्ञान है ऐसा करके क्या कहना चाहते हैं? ये प्रत्यक्ष है, ये प्रकट है, इधर उधर उपयोग जाता है और उसमें स्वपने का निश्चय अनादि से बना रखा है, तो ये अनुभूति स्वरूप होने पर भी यह ज्ञान मैंने यह आत्मा जानने में वेद में आता नहीं है, लेकिन वहां है नहीं, ऐसा नहीं है। ये वस्तु स्वरूप में रही हुई सुविधा है कि मौजूद है उसको देखना है, गैर मौजूद है उसको देखना है, ऐसी बात नहीं। इसे परमात्मा के उनसे फिर पुत्र कहते हैं आचार्य कि जैसे क्रोधादि क्रिया परिणमित होती हुई मालूम पड़ती है, वैसे ज्ञान की क्रिया और भूति हुई परिणमित हुई मालूम पड़ती है। और जैसे ज्ञान की क्रिया होती हुई मालूम पड़ती है, वैसे क्रोधादि क्रिया परिणमित होती हुई मालूम पड़ती है। चाहते कि अपनत्व एक जगह हो सकता है, दोनों में हो सकता है। अनादि से क्रोधादि भाव में अपनत्व किया है तो ऐसा होता हुआ मालूम पड़ता है, तो ज्ञान में अपनत्व होते हुए भी छूट जाता है, मालूम पड़ता वास्तव में अस्तित्व है ही नहीं। क्रोधादि में तो अस्तित्व वास्तव में है ही नहीं, क्योंकि वो तो छूट जाता है और हम तो रह जाते हैं। विभाव छूट जाता है, विभाव मिट जाता है, विभाव का नाश हो जाता है, हमारा नाश होता हम मौजूद रहते हैं। इसलिए हमारा अस्तित्व विभाव में अनुभव करना ये हमारी सर्वाधिक बड़ी गलती है। तलाश करने से, जांच करने से, देखने से, अवलोकन करने से मालूम पड़ता है कि मैं पना वास्तव में ज्ञान वेदन में होता है, क्रोधादि में होता। विचार के समझ में ये बात शायद समझ में नहीं आएगी, इसलिए देखने की बात कर रही है। और यहां से ही प्रयोग का प्रारंभ। देखो ये ज्ञान वेदन में मैं अपना अपनत्व अपना अस्तित्व मालूम पड़ता है कि नहीं मालूम पड़ता है? आप कहेंगे कि अब हम सुनने पर भी देखने की कोशिश करते हैं तो मालूम नहीं पड़ रहा है, इसलिए क्या करना? ये प्रश्न उठ सकता है। तो फिर क्या करें? और गौर से देखो, जब हम कहते हैं कि चीज वहीं है और आपको नजर नहीं आती है तो और देखो, सूक्ष्म इसलिए देखने में थोड़ी आदत नहीं है, सूक्ष्म चीज को देखने की थोड़ी दिक्कत हो सकती है शुरू में, लेकिन इसका देखने का बार बार प्रयास करने से ये नहीं देखा जाए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो देखने में नहीं आए। दूसरी सभी प्रवृत्तियों को बंद करके छोड़ करके इसमें ही लगे रहो, हमारा चैतन्य निराश हो गया। कहाँ खोया है? ज्ञान प्रकाश में खोया हुआ है, अंधेरे में खोया हुआ नहीं। ये भी एक सुविधा है, अगर अंधेरे में खो जाता तो तकलीफ हो जाती, लेकिन ये तो प्रकाश में पड़ा है। ये हीरा खो जाता है तो खाना पीना और नींद लेना छोड़ देते हैं। पहले देखो हमारा 25 लाख का हीरा था, 50 लाख का हीरा था, खो गया। क्या हमारे आत्मा 25-50 लाख से कम मूल्यवान है क्या? क्या अधिक मूल्यवान है? क्या है? There is no terminology. कोई पैसे से, हीरा से, इसका किसी टर्म में इसका मूल्यांकन नहीं है, कोई नहीं। इसका मूल्य होने के लिए जगत में कोई पदार्थ नहीं है। मूल्य का उपमा देने के लिए पदार्थ, अनुपम पदार्थ है। इतना मूल्यवान होने पर भी इसकी खोज के लिए मनुष्य जीव को चिंतित दशा भी नहीं हो तो इसको खोज करना ही, खोज करने के लिए इतने चिंतित हो जाए, इतने चिंतित हो जाए कि खाना पीना नींद लेना बंद हो जाए। कैसे हो जाए? बंद हो जाए। भूख लगती नहीं, क्या खाऊं? नींद आती नहीं, क्या सोऊं मैं? ये हालत एकदम से हो जाए। तो पढ़ना हो तो पढ़ लेना, कृपा तो देव के तेज शाम को उनको पत्र है कि भाई उसको पढ़ लेना। ऐसी मनुष्य दशा होती है, ऐसी चिंतित दशा में खोज होती है तो ये चैतन्य हीरा बहुत आसानी से नजर में आता है। बिना ऐसी स्थिति आए किसी को प्राप्त होता है, नजर में आता है, प्राप्त की प्राप्ति होती है। ऐसा बनता ये मिलान कर लेना है, भूमिका में आए है नहीं आए। यहाँ तो खोज करने की श्री गुरु की आज्ञा है। देखो यह ज्ञान है, उतना ही आत्मा है, उतना ही तेरा सत्य स्वरूप है, सत्ता स्वरूप है, सत्ता स्वरूप है, और यही सर्वस्व है। यही कहने के लिए सारे समय काल में आत्मा को ज्ञान मात्र कह करके पुकारा, उतना ही कहना। यहाँ से स्वरूप की पहचान कराने है, यहाँ से अनुभवांश से पहचान कराने है। ज्ञान मात्र कह करके वेदन अंश से, अनुभवांश से पहचान कराने है। दूसरा संकेत दिया है, सारा पूरा पत्र लिया भी है, सभी स्वाध्याय करेंगे। और यही ज्ञान मात्र से अनुभूति है, और यही एकांत शुद्ध अनुभूति मात्र पना से आगे आगे की सभी को नुकसान की भारत दशा की स्थिति होती है। निर्माण की प्राप्ति दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं कि निकाल के निकलो। तो कहते हैं कि ऐसा निश्चय करके माने कि उल्टा निश्चय को ज्ञान मात्र में ही सदा ही प्रीति करना, प्रेम करना। क्या? ज्ञान मात्र का निरंतर सदा ही रुचि प्रीति प्रेम करना।
ज्ञान का प्रारंभ कहाँ से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और अनुक्रम से योग्यता में किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव की कृपा से है अध्यात्म का विषय तत्वज्ञान का विषय बहुत खुला है, फिर भी मुमुक्षुओं की ये समस्या रही तो हम कहाँ से शुरू करें, हमारा कार्य हम कहाँ से कैसे शुरू करें और मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने की दिशा में अनुक्रम से क्रमशः कैसे आगे बढ़े, यह समस्या आज रही है। हर कार्य में कार्य पद्धति की कोई व्यवस्था होती है और जहाँ कार्य बड़ा होता है तो व्यवस्था भी तगड़ी होनी चाहिए। ये तो सबसे महान कार्य है कि हमें हमारा संसार परिभ्रमण से छूटकर निर्वाण पद त्रैलोक के पूज्य पद तक पहुंचना है, ये कोई मामूली कार्य तो नहीं है। और 14 गुण स्थान से आगे वाला जो मोक्ष पद है, निर्वाण पद है, जो सबसे उत्कृष्ट कार्य है, उसकी कोई नींव है तो ये मुमुक्षु की भूमिका है। मकान कितना भी बड़ा हो, इसकी मजबूती का आधार उसके नींव होती है। पेड़ कितना भी बड़ा हो, उसकी मजबूती का आधार उसका मूल होता है। तो ये जो सिद्ध पद है, वहां तक इतना महान कार्य है कि जहां से फिर जन्म मरण होता नहीं, जहां से कभी दुख होता नहीं और पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है, तो इसका नींव, इसका मूल कहाँ पड़ा है, मुमुक्षु की भूमिका में पड़ा है। मोक्ष मार्ग पाने के पहले जो स्थिति है वहां इसका मूल पड़ा है, कि जिसमें से अंकुर निकल करके सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान रूप एक दो अंकुर निकलते हैं, पहले दो पत्ते निकलते हैं, फिर आगे जाकर के ये वटवृक्ष होकर के इसका फल है वो मोक्ष आता है। ठीक इसीलिए तो हमारे जिनागम में भी ज्यादा से ज्यादा उपदेश मुमुक्षु को दिया गया है। ज्ञानी को क्या उपदेश देना, मुनिराजों को क्या उपदेश देना, ये खुद तो आत्मबोध को प्राप्त हुए ही हैं। जिसको आत्मबोध हुआ है उसको अधिक बोध की उतनी आवश्यकता नहीं है जिसको कुछ बोध नहीं मिला हो, बोध हुआ ही नहीं हो। इसलिए अधिक से अधिक उपदेश है कि अज्ञानी को मुमुक्षु को दिया गया है, इसका ही विस्तार हमारे शास्त्रों में आगमों में देखा जाता है। होता है ज्ञानी के बोध का भी शास्त्र होता है, आचारण के आचरण के चरणानुयोग के मुनियों को भी बोध का होता है, लेकिन वो हमारे प्रयोजन का नहीं है। तो इस भूमिका में प्रारंभ कहाँ से होता है, कैसे होता है और इसकी कार्य पद्धति अनुक्रम क्या है, अगर इस बात पर हमारा ध्यान नहीं है तो क्रम विपर्यास हो जाएगा। ये जो सम्यक ज्ञान के विपर्यास के जो भेद हैं, प्रकार हैं, उसमें एक कारण कार्य विपरीतता, भेदाभेद विपरीतता करके जो है, उसमें कारण कार्य की जो विपरीतता है ये वास्तव में क्रम की विपरीतता है, क्रम विपर्यास है और ये सबसे बड़ा विपर्यास है। जो गुरुदेव श्री इस विषय पर बहुत प्रचलित दृष्टांत देते थे हलवा का, गुजराती में शेरो किए थे आपने। तीन चीज तो है इसमें, आटा है, शक्कर या गुड़ का पानी है और घी है। और कोई बाई कितनी भी बुद्धिमान हो, चतुर हो, लेकिन क्रम छोड़ को छोड़ करके बना के जाएगी, तीनों बिगड़ जाएगा। चीज तीनों बिगड़ेगी, समय शक्ति और जो भी चलाने का ये चीज है, गर्म करने की चीज है, वो भी बिगड़ेगा। ये दृष्टांत किस लिए देते थे? हलवा का दृष्टांत क्यों देते थे? कि एक 5-10 मिनट में होने वाला हलवा सिर्फ तीन चीज मिलाने के बाद होने वाली वस्तु है खाने की, इतनी आसान है, फिर भी उसमें इसकी कोई व्यवस्था है बनाने की, क्रम है इसका कोई? जब छोटी मोटी बात में भी ऐसी व्यवस्था है तो हमें सिद्ध पद चाहिए, पूर्ण सुख चाहिए, थोड़ा सा भी दुख नहीं चाहिए, क्या इसकी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती? क्या ऐसा चलता है कि हम शास्त्र पढ़ते रहें, सुनते रहें, पूजा भक्ति करते रहें, दयादान यात्रा करते रहें और कार्य हो जाएगा? ऐसी बात होती है क्या? जैसा मन चाहे वो कर लेते हैं, जो शरीर बल वाला है वो क्रियाकांड में उलझता है, सूक्ष्म का बल वाला है वो शास्त्र में उलझता है, और धनबल वाला है, तनबल मनबल और धनमन वाला है, वो दयादान यात्रा दिन में उलझता है। और जैसे अपने मनमानी मनचाही कार्य पद्धति है वो कर लेते हैं, कोई कैसा भी शास्त्र पढ़ लेता है, कोई कैसा भी शास्त्र पढ़ लेते हैं, ऐसे कोई कार्य नहीं होता और अंधकाल में नहीं हुआ है। इसका यही कारण है कि क्रम के विषय में हमारा ध्यान नहीं गया कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए और सुव्यवस्थित रूप से कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा हमारा ध्यान नहीं गया। ठीक इसी मुद्दे पर, इसी व्यू पॉइंट पर एक कृपालु देव का बहुत सुंदर पत्र है जो हम इस शिविर के माध्यम से स्वाध्याय में लेंगे। पत्र के प्रारंभ में एक स्लोगन लिखते हैं, सूत्र लिखते हैं वो, कि निशंकता से निर्भयता उत्पन्न होती है और निर्भयता उत्पन्न होने से निशंकता प्राप्त होती है। जो अंतर्बाह्य असंग दशा है, जो मोक्ष का राजमार्ग है, ये तो सर्वसंग परित्याग करके अंतर्बाह्य निर्ग्रंथ दशा है, यही मोक्ष का राजमार्ग है। आत्मा एक अरूपी पदार्थ है और इसके शुद्ध परिणाम भी अरूपी है, अमूर्त पदार्थ के परिणाम भी अमूर्त होते हैं, फिर भी ये जो असंग दशा है ये अमूर्त ऐसे अमूर्ति ऐसे आत्मा के एक मूर्तिमंत वितराग दशा है, वो उतनी मूर्तिमंत वितराग दशा है कि इसके दर्शन मात्र से वो पहचाना जाता है कि वितरागता कैसे होती है। श्रवण बेलगोला में भगवान बाहुबली की मूर्ति देखी हुई, मुनि अवस्था की मूर्ति है, कितनी वितरागता है, टपकती हुई निथरती हुई वितरागता है, ऐसी मुनि दशा होती है। उसी को मूर्तिमंत मोक्ष मार्ग कहने में आता है। ऐसी दशा कहां से होती है कि जो निर्भय होता है उसे ऐसी दशा होती है। निर्भय कहां से होता है कि जिसको निशंकता प्राप्त होती है वो निर्भय होता है। और निशंकता कहां से होती है कि जिसको अपने आत्म स्वरूप का निश्चय होता है, प्रतिभास होता है, पहचान होती है, पहचान के काल में लक्ष्य होता है, तभी निशंकता आती है, इसके पहले नहीं आती है। ये जो पत्र है कि मुमुक्षु की भूमिका का प्रारंभ से लेकर के पदार्थ निर्णय तक, स्वरूप की पहचान तक पहुंचाने के लिए अनुक्रम क्या होना चाहिए कि जिस पदार्थ निर्णय से निशंकता आती है, जिस निशंकता से निर्भयता आती है और निर्भयता से निशंकता आगे जाकर के पैदा होती है। इसलिए इस बात को सूत्र के रूप में प्रारंभ में लिखी है। अब पत्र का प्रारंभ करते हैं। ये पत्र लिखा गया है खंभात के मुमुक्षु मंडल पर लिखा गया है। खंभात से कुछ मुमुक्षु भाई लोग कृपालु देव के परिचय में आए थे, उनको साहिब सामूहिक रूप में लिखा गया ये पत्र है। स्वाध्याय के लिए, मार्ग दिखाने के लिए ये पत्र लिखा गया है। प्रकृति के विस्तार से जीव के कर्म अनंत प्रकार की विचित्रता से प्रवर्तते हैं। प्रकृति मैंने कर्म प्रकृति है तो उसका विस्तार कितना है कि अनंत प्रकार के कर्म हैं। उसका बहुत विस्तार है, अनंत प्रकार मैंने बहुत विस्तार है और उसमें चित्र विचित्रता अनेक प्रकार की है। ऐसी चित्र विचित्रता है कि एक ही जीव में कुछ प्रकार के गुण होते हैं तो कुछ प्रकार के दोष होते हैं। जीव संसारी जीव में मनुष्य का तो परिचय ही हम लोगों का, तो कुछ कुछ में कुछ गुण देखते हैं तो कुछ दोष भी दिखता है। न कोई सर्वगुण संपन्न है न कोई पूरे दोष की मूर्ति है। ऐसी एक मिश्र अवस्था सभी मनुष्यों में दिखने में आती है। एक विचित्रता है और ये विचित्रता में मुख्यतया दोष के प्रकार भी अनंत दिखने में आते हैं। जो गुण होते हैं वो तो लौकिक सद्गुण होते हैं, वास्तव में तो वो भी दोष हैं और इसके प्रकार कितने हैं कि अनंत प्रकार के दोष हैं। हमें इस अनंत प्रकार के दोष में, दोष के विस्तार में जाने का कोई यहाँ पर प्रयोजन नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा दोष कौन सा है, कृपालु देव इस विषय पर अंगुली निर्देश करते हैं कि सबसे बड़ा दोष यह है कि जिससे तीव्र मुमुक्षुता उत्पन्न न हो अथवा मुमुक्षुता की ही उत्पत्ति न हुई हो। बहुत विचक्षणता से विषय का प्रतिपादन कर रहे हैं आप। ऐसा नहीं कहा कि तुम व्यापार धंधे फैक्ट्री कारखाने लगा के बैठ गया हो इसलिए तेरा सबसे बड़ा दोष हो, ऐसा नहीं कहा। सारे दिन बहुत पाप के परिणाम करते हो ये सबसे बड़ा दोष है, ऐसा नहीं किया। नहीं कहा, क्यों नहीं कहा? कि अनेक प्रकार के दोष में चक्कर में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एक बात ठीक हो गई, आगे की सब बात स्वतः ठीक होती जाएगी। इस लाइन पर चढ़ाने के लिए इस प्रतिपादन चल रहा है। किस किस दोष को तुम हटाएगा? एक दो कुछ ठीक होगा तो दो चार और बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, कहां से बढ़ेगा, तुझे पता ही नहीं लगेगा। तीव्र मुमुक्षुता को तो ज्ञान दशा कहना चाहते हैं, और मुमुक्षुता को सही मुमुक्षुता कहना चाहते हैं, यथार्थ मुमुक्षुता कहना चाहते हैं, कि जो मुमुक्षुता के फल स्वरूप ज्ञान दशा की प्राप्ति हो। वास्तव में मोक्ष मार्ग रूप जो ज्ञान दशा है, ये एक फल है, एक कार्य है, जिसका कारण यथार्थ मुमुक्षु दशा होती है। ये यथार्थ मुमुक्षु दशा कैसी होती है? कि जिसके फलस्वरूप ज्ञान दशा यानी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो जाए। ये सीधी सादी बात इस तरह प्रतिपादन करने के लिए ये पत्र सारा लिखा गया है। बहुत करके मनुष्य आत्मा किसी न किसी धर्म मत में होता है। चारों गतियों में ये व्यवस्था उदय की नहीं है, जो मनुष्य गति में इस प्रकार के उदय की व्यवस्था कर्म अनुसारिणी व्यवस्था है। नारकी में कोई संप्रदाय नहीं है, देवों में भी कोई संप्रदाय नहीं है, तिरियंतों में तो प्रत्यक्ष तौर से देखने में आता है कि कोई धर्ममत और संप्रदाय नहीं होता है। जबकि एक मनुष्य गति ऐसी है कि जिसमें आज भी हजारों संप्रदाय देखने में आ रहा है। तो बहुत करके मनुष्य आत्मा किसी ने किसी धर्म मत में यानी संप्रदाय में होता है, और इस कारण से वह धर्म मत के अनुसार धार्मिक प्रवृत्ति में जुड़ता है, लग जाता है, अपनी प्रवृत्ति करता है, अपने कुल परंपरा अनुसार, धर्म की परंपरा अनुसार। किंतु इसका नाम मुमुक्षुता नहीं है। धार्मिक प्रवृत्ति अपने संप्रदाय या कुल धर्म अनुसार कोई कर ले, इसी का नाम कोई मुमुक्षुता नहीं है। तो फिर मुमुक्षुता क्या चीज है, ये बात खोलनी है। ये तो सब करते ही हैं। तो करते हैं इसलिए क्या कोई मोक्ष मार्ग को पाते हैं, ऐसी बात नहीं है। वास्तव में तो मोक्ष का मार्ग एक ही प्रकार का है, और इसका सही प्रतिपादन दिगंबर जैन साहित्य और ज्ञानियों के अलावा कहीं भी नहीं है। खास करके अपने हिंदी भाषी प्रदेश में आजकल कृपालु देव का साहित्य का और वचनों का और व्यक्तिगत रूप से कोई परिचय इतना ज्यादा नहीं है, बहुत कम मात्रा में है। इसलिए वो लोग ऐसा सोचते हैं कि वो श्वेतांबर थे, ऐसा सोचते हैं, क्योंकि वो धर्म के खंडन मंडन में किसी मनुष्य को उपदेश नहीं देते थे, इसलिए इस विषय में कहीं लोग भ्रमित हैं। इनके जीवन को देखें, इनके वचनामृत को देखें, तो ये भ्रांति अपना स्थान नहीं रखती है। वास्तव में वो ज्ञानी थे, मोक्ष मार्गी थे। उतना ही नहीं, एक ऐसे धर्मात्मा थे कि जिसको एक देव के भाव के बाद जो मनुष्य का भाव होने वाला है, वही चरम शरीरी है और मोक्ष तत्व निर्वाण खुद को उसी भाव में वो पाने वाले। इस काल में, यानी इस दुष्म काल में, एक ही भव बाकी रह जाए ऐसा आत्म पुरुषार्थ, ऐसा पुरुषार्थ करने वाले धर्मात्मा, मैंने बहुत तेजी से मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने वाले धर्मात्मा, मोक्ष मार्गियों में भी इसकी संख्या बहुत कम होती है। कुछ सुदामी जी को चर्चा में एक दफे किसी ने पूछा कि आपकी जो बात है बहुत कड़क है, एकदम तिक्खी है, तीक्ष्ण है, और आप इतने निश्चय की बात जोर से करते हैं तो लगता है कि जो बड़े बड़े धर्मात्मा, जाने माने धर्मात्मा भी इतने प्रभावना आदि भाई भगवती में, शास्त्र रचना में, गंधर आदि भी होते हैं, तो इसका क्या समाधान करना। उन्होंने एक बहुत सुंदर उत्तर दिया था कि मोक्ष मार्गियों में भी एकदम तेजी से आगे बढ़ने वाले की संख्या बहुत कम होती है, धीरे धीरे शास्त्रादि में रुकते रुकते आगे बढ़ने वाले की संख्या ज्यादा होती है। और ये सही बात है, ऐसे दुष्म काल में, निकृष्ट काल में, एक भव में मोक्ष लेने वाले जो धर्मात्मा होते हैं, एक इस जमाने का आश्चर्य ही समझना चाहिए, इस काल का एक आश्चर्य ही समझना चाहिए कि ऐसी विभूति इस काल में भी यहाँ पर पैदा हो गई। तो कहते हैं यहाँ कि मुमुक्षुता, सही मुमुक्षुता आने से ही मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। और ये सही मुमुक्षुता का स्वरूप क्या है, एक ही पत्र में बहुत संक्षेप से इसका प्रतिपादन किया है कि मुमुक्षुता वो है कि सर्व प्रकार के मोहाशक्ति से मुंजाई शब्द पाए, मुंजवण जिसको कहते हैं, अकुलाहट हिंदी में कहते हैं अकुलाहट। जैसे किसी ने श्वासोश्वास लेने का बंद कर दिया हो तो क्या हालत हो जाए, कितनी छटपटाहट हो जाए श्वास लेने के लिए, जिंदा रहने की प्रक्रिया है ना, ऑक्सीजन लेते हैं, नहीं मिलता है तो क्या हालत होती है, बर्दाश्त नहीं होता है, ये परिस्थिति बर्दाश्त नहीं होती है। मुमुक्षु को भी अगर मोहाशक्ति के परिणाम में यह हालत होती है तो ये एक मुमुक्षुता का, पात्रता का, दर्शन मोह की मंदता का, चारित्र मोह की नहीं, एक स्वरूप है, एक लक्षण है कि ये मुमुक्षु के योग्य है। क्योंकि बात वही बन रही है कि मोहाशक्ति